अनगार धर्मामृत लेक्चर नंबर 12 ओम नमः सिद्धे पंडित श्री आशाधर जी लिखित यह अनगार धर्मामृत नामक ग्रंथ है और अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 41 पर 44 नंबर की हमने वो गाथा श्लोक पढ़ा था। यहाँ तो बात विद्याधर पना में भी धर्म विशेष प्राप्त होता ये बात चली थी, उसका विशेष अर्थ हम यहाँ देखेंगे नीचे से दूसरी लाइन वहां से। विद्याधर मनुष्य होने से, यानी वो तो देवगति के नहीं जीव, ये तो मनुष्य है, मनुष्य लोक से बाहर नहीं जा सकते। रुमा मनुष्य लोक किसे कहते हैं वो कितना बड़ा है मालूम है आपको? हाँ बहुत अच्छा, ढाई द्वीप जो है वो कितना बड़ा है? ढाई द्वीप कितने योजन है इतना नहीं मालूम, माधवी आपको पता है? याद नहीं है, मेरे को मालूम है 45 लाख योजन, तो ढाई द्वीप के नाम तो मालूम हो गए। जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, अच्छा और धात के द्वीप, धात के द्वीप, फिर कालोदरी समुद्र, पुष्कर आर्ध, पुष्कर द्वीप का आधा, आधे में पूरा ऐसा सर्कुलर जिसको कहेंगे राउंड में एक मानुषोत्तर पर्वत है, मनुष्य वहां तक ही जा सकते हैं। ये तो 45 लाख योजन ऐसा डायमीटर वाला गोल ये क्षेत्र, उसको मनुष्य क्षेत्र कहते हैं। हाइट में तो जहां तक मेरु पर्वत है लाख योजन तक, वहां तक वो मनुष्य लोग कहने में आता है, मनुष्य वहीं तक जा सकते हैं उससे बाहर नहीं। देखिए विद्याधर मनुष्य होने से मनुष्य लोक से बाहर नहीं जा सकते, ये भी विमानों में घूमना वगैरह वो सब बातें होती है, परंतु फिर भी वो मनुष्य लोक से बाहर तो नहीं जा सकते। किंतु देव बाहर भी विचरण कर सकते हैं, नंदीश्वर द्वीप क्या एकदम स्वयं रमण द्वीप और समुद्र वहां तक भी जा सकते, सभी असंख्या द्वीप समुद्रों में कहीं पर भी उनके जाने की गमन की शक्ति है। किंतु फिर भी विद्याधर देवों से अपने को सुखी मानते हैं, ये बात अब उसका कारण बता रहे हैं, ऐसा कारण नहीं बताया यही, वो उन्होंने साहित्यिक उसको श्लोक में ही बताया था। देवांगनाओं की आंखें निर्निमेश होती है, निर्निमेश समझते अपने से, हाँ जब भक्ति भक्ति नहीं है निर्निमेश, निमेश निमेश मात्र है निके क्षण मात्र, यानी आंख जब भक्ति खुलती है हाँ उसको निमेश कहते हैं, तो कहते उनमें वो निर्निमेश होती है, क्योंकि वहां तो कोई ऐसी चमड़ी वगैरह तो है नहीं, नहीं ऐसी मनुष्य जैसी कुछ रचना नहीं है, इसलिए कहते हैं कि यानी इसको उसमें सुख लगता है। वैसे देखा जाए तो विद्याधर जो है यानी वो स्त्रियां देखती है तो उनके कटाक्ष में जो सुख मिलता है वो देवों को नहीं मिलता, इतनी बातें बताने चाहिए। यहाँ हम ये बात ले सकते हैं कि विद्याधर मनुष्य गति का जीव संयम धारण कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ये तो मुख्य बात है। मनुष्य भव इतना कीमती है और उसमें भी उनके अनेक विद्याओं प्राप्त है, यानी अन्य मनुष्यों की अपेक्षा इनके कुछ अधिकता है। तो कहते वो भी पुण्य के योग से, पुण्य के निमित्त से कहो, उसके उदय से प्राप्त हुआ। आगे कहते हैं कि आहार शरीर रूप संपत्ति भी पुण्य के उदय से ही मिलती है, क्योंकि आहार शरीर और आहार अंगोपांग नाम की जो कर्म प्रकृतियां हैं, पुण्य प्रकृतियां किसके बनती है, कौन से गुण स्थान में, नलिन में, मतलब छठे में उदय है, सातवें और आठवें में बनती है, ये इनको पता है, हाँ इसलिए आपको पूछा। हाँ सातवें आठवें में बनती है, उदय छठे में है। हमने देखा था ऊपर बनती है और नीचे उदय है, छठे गुण स्थान में उनके विकल्प आए तीर्थंकर के पंच कल्याणक में जाने का, या उनके जो कुछ कोई तत्व में कोई प्रश्न हो तो उस संबंधी, तो आहार शरीर की रचना होती है अंतर्मुख में, वहां जाके लौटकर फिर मूल शरीर में आते, ये सारा ही कार्य छठे गुण स्थान में होता है, उन्हीं के होगा जिन्होंने वो आहार शरीर और आहार अंगोपांग नामक पुण्य प्रकृतियों का बंध किया। हाँ उसको समुद्रघात कहते हैं, आहारक समुद्रघात कहते हैं, परंतु वहाँ वो दूसरा शरीर है आहारक नामक, मूल शरीर में तो आत्म प्रदेश है ही है, और फिर वे जो शरीर वहां तक तो जाके लौट कर आता है तो बीच में पूरा कंटिन्यूएशन में है, ऐसे कि टुकड़े नहीं होते आत्मा के दो कि थोड़े से वहां प्रदेश जाके आए और थोड़े यहां बैठे, ऐसा नहीं होना, या पूरे के आत्म प्रदेश उसमें से निकल कर उसमें गए और फिर अंतर, ऐसा भी नहीं है, उसी को समुद्घात कहते हैं। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, फैलना, उसको कहेंगे समुद्घात। तो ये कहते आहारक शरीर रूप संपत्ति, ये आहारक शरीर रूप संपत्ति कहा उसको, ये पुण्य के योग से कहो या पुण्य के उदय से, उन पुण्य प्रकृतियों के उदय से होता है, और यहाँ तो पुण्य का गुणगान चल रहा है, जिसकी शादी हो उसी के गीत गाए जाते हैं, ये पुण्य के लिए नहीं, जो जिसके ये विभूतियां प्राप्त है, रिद्धि प्राप्त है, उसको उसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि ये सारे समय दृष्टि है, उन्हीं के ही होते हैं। और मिथ्या दृष्टि तो ऐसा पुण्य कमाना चाहता है, क्योंकि उनके ऐसे फल देख देख कर वो तो उसको, हाँ उसके बहुत लोभ छूटता है उसका कि मुझे भी प्राप्त हो जाए, परंतु उनके तो ऐसी बनती नहीं है। अब इसको हम पढ़ेंगे 45 नंबर, प्राप्याहारक देहेन सर्वज्ञं निश्चित श्रुता योगिनो धर्म महात्म्यान नंदन्त्यानंद में दुरा। धर्म के महात्म्य से आहारक शरीर के द्वारा, धर्म के नहीं यहाँ पुण्य की बात चल रही है, यानी उसके उदय से आहारक शरीर की उत्पत्ति हुई है, बना है वो केवली के पास जाकर और परमागम के अर्थ का निर्णय करके, क्योंकि अर्थ में कोई उनके प्रश्न था तभी तो वहां गए, ऐसा नहीं कहा कि इस तत्वों में शंका होती है, ये प्रयोजनभूत तत्वों में कोई शंका नहीं होती, वो निशंक है, तो अभिप्राय में कोई वहां तो बातें है ही नहीं है, फिर भी जो कर्णानुयोग जैसे कुछ कठिन विषय है तो उसमें तो जहां केवली नहीं है वहां उसका निश्चित उत्तर, क्योंकि आचार्यों की अनेक धाराएं चलती, कभी कभी दो मत चल, जब जैसे आजकल के काल अनेक ऐसे विषय है कि जहां दो धाराएं चलती है तो उसमें से निश्चित कौन सी है, इसका निर्णय तो यहाँ नहीं हो सकता है और ये हम नहीं कर सकते, हम तो ऐसा कहेंगे ये दो धाराएं इस मत में, इस विषय में चल आ रही है, तो कहते ये सर्वज्ञ के द्वारा उसका निर्णय हो जाता है। तो परमागम के अर्थ का निर्णय करके मुनिजन आनंद से पुष्ट होते हुए ज्ञान और संयम से समृद्ध होते हैं। ये जो कुमकुंदाचार्य गए थे विदेह में, कौन से शरीर से गए थे, आहारक औदारी से, क्यों, कैसे आप कह सकते हैं, ये आप निर्णय कैसे कह सकते हैं, बोलो,
8 दिन
रहे थे, हाँ, और आहारक शरीर कितने काल तक, अंतर्मुख छठे गुणस्थान के भी छोटा काल आहारक शरीर का, क्योंकि वो तो सातवें में जाएंगे तो वो तो शरीर नहीं रहेगा ना, आहारक शरीर मात्र छठे में रहेगा, तो छठे का जो अंतर्मुहूर्त है उससे भी छोटा अंतर्मुहूर्त आहारक शरीर बनना, वो जाना, फिर लौट कर आना, ये सब उसके काल में हो जाता है। और कुंद नहीं, एक्सेप्शन नहीं था, कुंदकुंदाचार्य औदारिक शरीर ने मूल शरीर के साथ गए, आहार के साथ नहीं गए, वो सदैव गए थे। अन्य भी जा सकते हैं परंतु उन्हें तो देव ले गए थे। ऐसा भी चारण रिद्धिधारी मुनि है वो भी जा सकते हैं।
यहाँ पर भी
यहाँ पर
चारण रिद्धिधारी थे इसलिए गए, कोई कहते
देव गए थे। एक देखो ऐसा है ना कि यहाँ से उन्होंने विद्यमान अभी जो वर्तमान में विद्यमान है सीमंदर जिनेन्द्र भगवान को भाव से नमस्कार किया तो वहाँ दिव्य ध्वनि में उनको तो आशीर्वाद रूप वचन निकले। वहाँ तो ओम ही निकलता है परंतु जिस किसी के मन में जैसे किसी को ये सुनाई दिया ना, क्योंकि हर एक जो अपने अपने कैपेसिटी के अपने अपने इसके अनुसार वो सुनते हैं तो फिर वो वहाँ प्रश्न उठा किसी को तो फिर वो वहाँ कुंदकुंदाचार्य के यहाँ और कोन्दूर से उनको ले गए। 8 दिन वहां रहे थे, वहां तो कितना 500 धनुष वाले और कुंदकुंदाचार्य इतने जैसे अंगुष्ठ जैसे उनको तो वेलची जितने छोटे इलायची इसलिए उनको एलाचार्य कहते हैं। देखो विशेषण जो मुनि चारित्र विशेष का पालन करते हुए आहारक शरीर नाम कर्म नामक पुण्य विशेष का बंध कर लेते हैं क्योंकि विशिष्ट विशुद्धि में ये बनती है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में रहते हुए यदि उन्हें शास्त्र विषय कोई शंका होती है और वहां केवली का अभाव होता है तब तत्व निर्णय के लिए महाविदेहों में केवली के पास जाने के लिए आहारक शरीर की रचना करते हैं क्योंकि अपने औदारिक शरीर से जाने पर उनका संयम न पलने से महान असंयम होता है। वह औदारिक शरीर से जाने पर वो संयम नहीं पाल सकते क्योंकि वो इतना दूर है। यहाँ तो देव ले गए कहो या उस विशिष्ट रुद्धि से गए तो वहां तो संयम में कोई उनके कुछ खोप नहीं आई परंतु वैसे औदारिक शरीर से जाने में संयम छूट सकता है इसलिए आहारक शरीर से जाते हैं। वह आहारक शरीर एक हाथ प्रमाण होता है, एक हाथ नहीं इतना ऐसा एक हाथ प्रमाण शुद्ध स्फटिक के समान धवल वर्ण होता है और मस्तक से निकलता है, न तो कोई उसे रोक सकता है और न वही किसी को रोकता है क्योंकि जो औदारिक शरीर है तो हड्डी आदि से बना है और वो आहारक शरीर तो विशिष्ट होता है उसमें कोई हड्डी वगैरह नहीं होती है सब तो धातु से रहित होता है। एक अंतर्मूर्त में संशय को दूर करके पुनः उन्हीं के ही शरीर में प्रविष्ट हो जाता है इसे ही आहारक समुद्घात कहते हैं। कहा भी है नीचे गोमसार जीव कांड की गाथा उद्धृत की है आहार श्रदयेन पमत्त विरदस्स होदि आहारम असंजम परिहरणठम संदेह विनाशनठम च। यानी आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से प्रमत्त विरत के यानी वो छठे गुणस्थान वाले के होदि आहारम आहारक शरीर होता है किसके लिए असंयम परिहरणम असंयम का परिहार करने के लिए और संदेह का नाश करने के लिए। निखेते केवली दुग विरहे निकमण पहुदि कल्याणे परखेते संवित्ते जिन चरण धर वंदनम च। निज क्षेत्र में यानी अपने क्षेत्र में केवली दुग इन्हें केवली द्विक केवली और श्रुत केवली का विरह है, विरह होने से निक्रमण पहुदी कल्याणे उनके तो निष्क्रमण कल्याणक आदि जो है यानी मोक्ष कल्याणक आदि अन्य भी जो कल्याणक है परखेत्य संवित्य उसके लिए पर क्षेत्र में जाते हैं जहाँ वो तीर्थंकर विराजमान है वहां चले जाते हैं। जीर्णधर वंदनठम च जीर्णधर है जीर्णधर वगैरह यानी वो जिनेंद्र भगवान के या जो अकृत्रिम चैत्यालय उनकी वंदना के लिए भी जाते हैं जिनालय उनकी वंदना के लिए। उत्तम अंगम यवे धातु विहीनम सुहम असंगणनम स्वसंठानम धवलम हत्तपमानम पसत हृदयम। उत्तम अंग से निकलता यानी मस्तक से निकलता, धातु विहीन मैंने सप्त धातु से रहित है यानी हड्डी है चमड़ी है इन जैसे मनुष्य शरीर है औदारी को ऐसे वो नहीं है। शुभ मैंने शुभ है असंगणनम उसमें सहनन नहीं होता। शुभ संठानम ये शुभ संस्थान है जिसको हम समय चतुरस्य संस्थान कहते हैं। धवल वो कलर उसका वर्ण है। हत्त प्रमाण मैंने एक हाथ प्रमाण है और पसत उदयम प्रशस्त का उदय है यानी वो जो प्रकृतियों का उदय चलता है उसका। अव्वाघादी अंतो मुहूर्त का लठिदी जहन्निदरे पज्जक्ति संपुन्ने मरणम भी कदाचि संभवी। अव्वाघादी का अर्थ थे उसका व्याघात नहीं होता यानी वो नष्ट नहीं होता बीच में अंतर मुहूर्त काल तक उसकी स्थिति रहती है। और जहन्न इधरे यानी वो जहन्न और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त है। इतर है नी जो जहन्न नहीं वो उत्कृष्ट यानी इस शरीर का जघन्य काल भी अंतर्मुहूर्त है उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त।
आहारक
आहारक में होता है आहारक मिश्र में नहीं होता। यहाँ लिखा है देखो लास्ट लाइन में पज्जति संपूर्ण मरणम पी कदाचि संभव ही यानी आहारक शरीर संबंधी भी छह पर्याप्ति होती है तो वो पर्याप्ति पूर्ण होने पर जब तक आहारक शरीर संबंधी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक उसको हम आहारक मिश्र कहेंगे वहां मरण नहीं है परंतु पर्याप्ति पूरी होने पर कदाचित मरण भी हो सकता उस अवस्था छह पर्याप्ति पूरी होने पर मरण भी हो सकता है। व्याघात यानी नष्ट होना अव्याघात यानी आहारक शरीर बना है वो बीच में छूटता नहीं है छूटता नहीं है यानी मरण से छूटेगा परंतु ऐसा वो नाश नहीं होता उसका। हमने ये भी देखा था कि व्याघात से रहित यानी प्रतिघात हमें वो किसी से रोका नहीं जाता उसको भी हम कहेंगे वो अव्याघात। ये वहां लिखा है मैं इतना बताऊंगी देखो ऊपर इसका अर्थ भी लिखा है। आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से यानी आहारक शरीर नाम का नाम कर्म है आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से आहारस्य उदय ने कहा ना प्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती मुनि के आहारक शरीर होता है। यह असंयम से बचाव के लिए तथा संदेह को दूर करने के लिए होता है। मुनि जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में केवली शुद्ध केवली का अभाव होने पर तथा विदेह आदि क्षेत्र में तप कल्याणक आदि संपन्न होता हो या जिनेन्द्र देव और जिनालयों की वंदना करनी हो वहां जिन और जिनधर वंदना जिन और जिनधर वंदना यानी जिनालयों की वंदना तो उसकी रचना इस प्रकार होती है। वह मस्तक से निकलता है धातु से रहित होता है धातु यानी वो शरीर संबंधी धातु सप्त धातु शुभ होता है सहनन से रहित होता है समय चतुरस्य संस्थान वाला होता है एक हाथ प्रमाण और प्रशस्त उदय वाला होता है। ये हमने यही सब देखा था वो डायरेक्ट हमने उसका अर्थ देखा यहाँ लिखा था उन्हें पता नहीं मैंने देखा नहीं। व्याघात रहित होता है यानी उसको कोई रोक नहीं पा सकते बीच में कोई अटकाव नहीं कर सकते या वो नष्ट नहीं होता किसी कारण। जगन में उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मूर्त होती है ये भी देखा था हमने। आहारक शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने पर यानी आहारक शरीर संबंधी पर्याप्ति हो जैसे यहाँ मनुष्य में जन्म लिया तो माँ के गर्भ में आया तो वहां पर भी छह पर्याप्ति हमने सबने पूरी की। वैसे जब आहारक शरीर बनता है तो शुरुआत में आहारक शरीर संबंधी छह पर्याप्ति होती है। नाम याद है मिली भाई छह पर्याप्ति ये वीरज भाई तैयार है बोलो बोलो। देखो आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति में उस शरीर संबंधी परमाणुओं का ग्रहण होकर उसको सॉलिड लिक्विड बनाया जाता है। शरीर पर्याप्ति में उसमें वो अवयवों की रचना होती है। अब आहार होगी उसके जो यथायोग्य बनेगी। इंद्रिय पर्याप्ति में जहां इंद्रियां बननी है वहां के आत्म प्रदेशों से विशिष्ट पदार्थों को उसका अपना अपना विषय को ग्रहण करने की शक्ति उत्पन्न होती है।
फिर तीन
उसके जो इंद्रियां वहां बननी है यहां तो आहारक शरीर है ना, इन जनरल बात करनी है तो जिसकी जितनी इंद्रियां है उस इंद्रिय संबंधी वहां उसकी इंद्रिय पर्याप्ति होगी। वो सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध उतनी द्रवेंद्रिया बनेगी, उतने ही उनके जो सूक्ष्म है उतने ही वहां वो इंद्रिय पर्याप्ति भी हो जाए। फिर श्वासोश्वास पर्याप्ति, श्वास और उच्छ्वास वाले, फिर भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ये छह पर्याप्तियों के नाम देखे हमने। अब हम यहाँ आते हैं 43 नंबर के पेज पर। आगे कहते हैं कि धर्म के महात्म्य से जिन्हें स्व पर भेद ज्ञान हो जाता है वे मुनिंद्र अतीन्द्रिय सुख का संवेदन होने से अहमिंद्र पद से भी विमुख होते हैं। विमुख होते हैं तो क्या अर्थ होते हैं, यानी उससे उनकी कोई चाह नहीं है, वो तो अपने आत्मा में ही स्थिर होना चाहते हैं। देखो हम आगे देखेंगे, इसको पढ़ेंगे पहले। हम देखेंगे अभी क्या। कथयतु महिमानं कोनु धर्मस्य येन स्फुटघटित विवेक ज्योतिष शांत मोहा समरस सुख संविलक्षित त्यक्ष सौख्यास तदपि पदम पोहं त्याहमिंद्रं मुनीन्द्रा। उस धर्म के महात्म्य को कौन कह सकता है जिसके महात्म्य से स्पष्ट रूप से स्वपर का भेद ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले शांत मुह अर्थात उपशांत कषाय गुणस्थानवर्ती और समरस अर्थात यथाख्यात चारित्र से होने वाले सुख की अनुभूति से अतीन्द्रिय सुख को साक्षात अनुभव करने वाले मुनीन्द्र उस लोकोत्तर अहमिंद्र पद से भी विमुख हो जाते हैं। यानी उनका महात्म्य कौन कह सकता है, इतना उनका महात्म्य है। देखो यहाँ ये सच्चा धर्म की बात है, अंतरंग में स्थित है, स्वप्रकट का भेद विज्ञान है ना, केवल पुण्य के उदय में नहीं लेना इसको। विमुख यानी परामुख, जिसको सन्मुख से उल्टा, यानी उस अहम इंद्र पद से भी उनको कोई चाह नहीं है, या विमुख हो जाते हैं उपशांत कषाय शपक श्रेणी चढ़ के मोक्ष चले जाते हैं, ऐसा भी कहीं। अच्छा आपने पढ़ा है, ठीक है। विशेषार्थ, सातवें गुणस्थान के पश्चात गुणस्थानों की दो श्रेणियां होती है। इस श्रेणी का अर्थ होता है सीढ़ी चढ़ना, तो श्रेणी का आरोहण करना यानी ऊपर के गुणस्थानों में जाना। आपको पता होगा एक होती उपशम श्रेणी, एक होती क्षपक श्रेणी। उपशम श्रेणी में वो ऊपर जाके फिर लौटकर उसी क्रम से नीचे आता है, यानी छठे सातवें वाले मुनिराज, फिर आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां, फिर दसवां नौवां आठवां सातवां छठा। तो ये द्वितीय उपशम वाले भी चढ़ सकते हैं, यक्षाई समय दृष्टि भी उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले छठे सातवें के बाद आठवां, वो क्षपक वाला आठवां, ऐसा नहीं कि आठ नौ दस के बाद दो रस्से, ऐसा नहीं है। शुरू से ही दोनों अलग अलग रस्से। उपशम श्रेणी के जो गुणस्थान उपशम का आठवां, उपशम का नौवां, उपशम का दसवां, फिर ग्यारहवां। क्षपक श्रेणी में क्षपक का आठवां, क्षपक का नौवां, क्षपक का दसवां, बारहवां, वो क्षपक को ही होता है, फिर नियम रूप से तेरहवां चौदहवां, फिर मोक्ष। तो कहते एक को उपशम श्रेणी कहते, दूसरी को क्षपक श्रेणी, उपशम श्रेणी में मोहनीय कर्म का उपशम किया जाता है और क्षपक श्रेणी में मोह का क्षय किया जाता है। मोहनीय में यहाँ पर चारित्र मोहनीय लेना श्रेणी की बात है, क्योंकि दर्शन मोहनी का उदय वाला तो है ही नहीं है, तो दर्शन मोहनी का उपशम करके चढ़ता है या क्षय करके चढ़ता है। क्षपक श्रेणी में मोह का क्षय किया जाता है। क्या अकेले मोह का क्षय होता है? क्षपक श्रेणी में किसका क्षय होता है? चारों घाती कर्मों का। हाँ, यह है कि दसवें के अंत में मोह का क्षय हो गया और बारहवें के अंत में ज्ञानावरण दर्शन अंतराय का क्षय। वहाँ और भी नाम कर्म की 13 कक्षे होते हैं, पर उसकी बात अभी अपना विषय नहीं है। 8 से 10 तक गुणस्थान दोनों श्रेणियों में सम्मिलित है। उसके बाद 11वां उपशांत कषाय कहो या उपशांत मोह कहो, एक ही बात है। उपशांत कषाय गुणस्थान उपशम श्रेणी का ही है और 12वां गुणस्थान क्षपक श्रेणी का ही है। इस तरह से 8 से 11 तक 4 गुणस्थान उपशम श्रेणी के हैं और 11वें को छोड़कर 8 से 12 तक के 4 गुणस्थान क्षपक श्रेणी के। उपशम श्रेणी पर आरोहण करने वाला यानी चढ़ने वाला 11वें गुणस्थान में जाकर नियम से नीचे गिरता है, क्योंकि दबा हुआ मोह उभरा, वो उपशमित किया दबाया है, वो ऐसे उल्टे क्रम से फिर हाँ उसका उदय चालू हो जाता है। यदि वह 11वें में मरण करता है तो नियम से अहमिंद्र देव होता है। अहमिंद्र किसको कहते हैं और वो कहाँ रहते हैं? मिली भाई हाँ? लिखा तो बोलो ना, लिखा तो पढ़ के बोलो, क्या लिखा है? हाँ, पर वो तो वो ठीक है, पर वो उसका अर्थ बताया है, वो कौन होते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन से विमानों में पाए जाते हैं? अहमिंद्र, अहमिंद्र ग्रहवेकों में अनुदिश और अनुत्तर सारे ही अहमिंद्र है। प्रत्येक जीव इंद्र है। नीचे के जो 16वें स्वर्ग तक क्या होता है, एक इंद्र है, एक प्रति इंद्र है, सामान्य के लोकपाल है, उसमें ग्रेडेशन होते हैं बहुत सारे, जिसको कल्पवासी कहते हैं, और ऊपर के कल्पातीत है। प्रत्येक जीव इंद्र है वहां, उसको हम इंद्र कहते हैं, यानी स्वामी और नौकर ऐसा कोई भेद वहां नहीं है। इसके लिए हम वो अमेरिकन वालों का अभी यहाँ पर भी वैसा ही है उदाहरण देते हैं, हम अपना अपना स्वामी, कोई सेवक ही नहीं है। नौ के नौ गिरवे वह हम इंद्र ही है, यानी 16वें स्वर्ग के ऊपर पहले ग्रहवेग से लेकर सभी ग्रहवेग, सभी अनुदिश अनुत्तर सारे अहम इंद्र है।
देविया नहीं है?
हाँ, देविया नहीं है। तो कहते 11वें में, क्योंकि ये इतने शुक्ल लेशा का वो उत्तम वहाँ अंश है, वहां पर वहां मरने वाले और ऊपर के ही स्वर्गों में उत्पन्न होंगे। तो
कोई जाएगा
उपशम श्रेणी में मरने वाले तो नियम से जाएंगे, बाकी भी और जिन्होंने जैसे मिथ्या दृष्टि तो जाते ही नहीं, संयम ही जाते ऊपर। 9वें ग्रह में तो द्रव्यलिंगी जा सकते, वो भी सहनन वाला नियमित, और वो भी शुक्ल लेशा में मरते हैं तभी तो जाएंगे। शुक्ल लेशा में मरना तो आवश्यक है उनके लिए भी, लेशा का नियम, जिस लेशा में मरता है उस लेशा वाला देव होकर उत्पन्न होता है। अन्य जो द्रव्यलिंगी मुनिराज जा सकते हैं उत्तम सहनन वाले, बाकी अन्य कोई नहीं जा सकता, यानी भावलिंगी तो जाएंगे ही ना,
जाएंगे
दूसरे कोई नहीं जाएंगे, नीचे के गुणस्थान वाले नहीं जा सकते, यानी मिथ्या दृष्टि जाते हैं परंतु वो द्रव्यलिंगी वाली कंडीशन है तो जाएंगे। तीरंज भी हमने देखे थे 16वें स्वर्ग तक जाते हैं।
हाँ?
پہلے سے 90 تک جا سکتے. 90 اس کی لمٹ ہے لاسٹ. انودیش اور انتر میں تو سارے ہی سمے درشٹی ہی اتپن ہوتے, وہاں پر جنم سے سمے درشٹی ہی ہے, قائم سمے درشٹی رہتی. گریویکوں میں تو چاروں گنستان ہوتے, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا. کتنے تو وہاں تو بھاولنگی منی میجورٹی لے جائیں گے, پرنتو متھیا درشٹی بھی وہاں تک جا سکتا ہے. ایسا نہیں کہ گریویکوں میں سارے متھیا درشٹی دربے لنگے جا رہے ہیں, ایسا نہیں لینا. ان متھیا درشٹی نہیں, دربلنگ کے چھوڑ کر باقی متھیا درشٹی نہیں جا سکتی. یہ نردچار پالن کرنے والے, ایسے اتم سہنن والے. گریویک نو ہے
دربلنگ کی منی جا سکے جو پالن کرتے ہیں.
ہاں, جہاں کی آیو باندھی ہے وہاں جائیں گے, جہاں کی آیو باندھی ہے اور جس لیشا میں جہاں مرن ہوتا ہے ویسا وہاں تک جانا ہوگا. ان پرتیک گریویک کی آیو تو الگ الگ ہے نا, اوپر کی گریویکوں کی ادھک آیو ہے, تو اس پرینام میں انہوں نے آیو بندھی ہے وہاں تک کی, تو مر کر ویسے مرن بھی اس لیشا میں ہوگا اس کے, اور وہاں چلے جائیں گے. شکل لیشا تو آنت سے ہے, آنت پرانت تارن اچھے, وہاں سے شکل لیشا چالو ہو جائے. اس میں بھی اور اوپر مدھیم انش ہے شکل لیشا. ہاں, اکتیس ساگروں کی آیو والے, 31 آیو کی ساگر کی آیو ہے نا, 90 گریویک کی. ایک ایک گریویک میں ایک ساگر بڑھتے گیا ہے. دیکھو آپ کا پرشن ہے وہ دروی لنگی وہاں اگر متھیا تو میرے وہاں جانے کے بعد بھی سمیک تو پراپت کر سکتے, نہیں کیا تو 31 ساگر تک متھیا درشٹی رہے. وہاں تو ایک منشیہ گتی ہی بنتی ہے, ان کے تو کوئی تیرے آنت پران جو شکل لیشا والے دیو ہے ان کے تو سہسرار تک ہی تیرینج گتی منشیہ گتی کا آپشن ہے. اوپر, ہاں اوپر کے سارے متھیا درشٹی بھی جیو منشیہ میں ہی آئے گے مر کر, یہ نیم ہے. آنت آنت کے نے 13, 14, 15, 16 سورگ اور 9 کے 9 گریویک. سمے درشٹی تو منشیہ میں آئیں گے اس میں تو کوئی نوائی نہیں ہے, پرنتو متھیا درشٹی بھی منشیہ میں ہی آئیں گے, وہ پریاپت منشیہ میں ہی آئیں گے, یہ نیم ہے. یعنی کوئی ایسا مانتے نا گریویک میں گئے اور وہاں سے, ایک ایسا نہیں. وہ نیچے کے بھون واسی سودھرما اندر اور سودھرما اور ایشان تک کے جو دیو ہے وہی ایکندری جاتی میں اس کا بند کر کے وہاں جا سکتے. اوپر کے دیو ایکندری میں نہیں جاتے, اور نیچے کے دیو جو ایکندری میں جانے والے کوئی نگود میں نہیں جاتے. چڑھالا میں تو یہ تو انہوں نے شارٹ میں کتھن کیا ہے, بعد میں کوئی نگود میں بھی جا سکتا ہے. یوں پریورتن پورو کریو جو بتایا ہے, تو ایسی کتنے ہی جیووں کی ایسی بھرمنا ہو جاتی ہے کہ وہاں سے آیا اور نگود میں چلا گیا, ایسا نہیں. یہ تو نیم ہے کون سے جیو کون سے گتی میں مر کر جا سکتے ہیں, کون سی پریائے میں جا سکتے ہیں, کیونکہ کون سے جیووں کو کون کون سے کرم بنتے ہیں کون سے نہیں بنتے اس کا بھی نیم ہے. اپنا ہوا تھا نا یہاں کرم کانڈ کے وشے میں, ہوا تھا کون سے نیچے کے بھون واسی اور سودھر میشان تک کے جیو ایکندری میں جاتے جب کہیں گے تو پریاپت پرتھوی جل یا ونسپتی, کون سے پرتیک ونسپتی اگنی وایو میں نہیں جاتے, نہ پریاپتوں میں جاتے نہ سوکشم سادھارن میں جاتے, یہ ان کے نیم ہے. ان پرکرتیوں کا ان کے بندھ ہی نہیں ہے. نارکی تو ایکندری میں بھی نہیں جاتے, نارکی تو پنچیندری میں ہی جائیں گے. یہاں ہم یہ بات دیکھ رہے تھے کہ یدی وہ 11ویں میں مرن کرتا ہے تو نیم سے اہم اندر دیو ہوتا ہے, کنتو یہ کون سے جیو لیے اپشم شرینی میں 11ویں میں مرنے والے, کنتو جو چرم شریری ہوتے, یہ چرم شریری کا ارتھ معلوم ہے مادھوی؟ چرم کا ارتھ کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ, انتیم, شریری. तदगम तद्भव मोक्ष का है, यानी ये उनका अंतिम शरीर है, अभी इसके बाद वो शरीर धारण नहीं करेंगे। इसी भव में मोक्ष जाने वाले जो जीव है वो तो क्षपक श्रेणी चढ़कर, भले उपशम श्रेणी चढ़ के उतरेंगे कभी, ऐसे भी कोई होगे, परंतु वो तो नियम से क्षपक श्रेणी चढ़कर मोक्ष जाने वाले हैं।
चरम शरीर वो अलग टाइप का होता है,
अलग टाइप का नहीं, उनको चरम शरीर ही कहते हैं क्योंकि वो मोक्ष जाने वाले जीव है, इसलिए हाँ उसमें भी है कि वज्रषभ नारा सहनन वाले होते हैं, ये तो नियम है। और जो उपशम श्रेणी चढ़ने वाले वो तो ऊपर के तीन सहनन के साथ सूक्ष्म श्रेणी चढ़ सकते हैं, अब वो क्यों नहीं शपक श्रेणी चढ़ते, ये से कहीं सोच समझ कर श्रेणी चढ़ने की बात नहीं होती, सहज रूप से वैसा पुरुषार्थ हो जाता है। ऐसे भी हो सकता है कि वज्रषभ नारा सहनन न हो, वज्र नाराज हो, तो उस पुरुषार्थ में सूक्ष्म श्रेणी चढ़ के उतरे है, शपक श्रेणी तो नहीं चढ़ेंगे, वो बद्धायु हो, यानी आयु का बंध किया हुआ हो, तो आयु का बंध किया है तो भोगना पड़ेगा, गति बनती है तो उसकी कोई कंडीशन नहीं भोगने की, वाले ही होते हैं चरम शरीरी, वो नियम से वैसे ही पूर्व भूमि बांध के आए हुए हैं। तो कर्मों को भी पता चलता है ये अभी मोक्ष जाने वाले हैं या अभी इसी है, सहज रूप से वैसे परिणामों में वैसे वो मनुष्य गति बांधेंगे, मनुष्य आयु बांधेंगे, वैसा वज्रषभ नारा सहनन बांधेंगे, और यहाँ उनका ये अंतिम भाव, इसको कहते हैं ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। क्योंकि हमने तो ऐसा भी देखा था, बादर निगोद से निकला हुआ जीव मनुष्य होकर उस भाव में मोक्ष भी जा सकता है, तो वहां रहते उसने मनुष्य गति बांधी, मनुष्य गत्यानुकूली बांधी, उच्च गोत्र बांधा, वज्रषभ नारा सहनन बांधा, ये समझ, तो ये सब बांध के आया है, तो ये सब प्रशस्त प्रकृतियां बांध के आया, तो वहां कौन सा पुण्य किया होगा? हाँ वो शिखर जी के वृक्ष का बादर कोई निगोद होगा क्या? कैसे आप लोगों को ऐसा ही लगता है ना, सिद्ध शिला वाला कोई जीवन की भ्रमणा होती है कि ये कुछ क्रिया में, पुण्य भी उसने क्रिया में माना है, परिणाम अलग बात है, क्रिया अलग बात है। हम भी यहाँ मनुष्य जो पुण्य परिणाम करता है, परिणामों की कहाँ पता चलता है, हम तो बाह्य की क्रियाओं को ही गिनाते हैं। उसने दान दिया, वो दान दिया तो लो शो ऑफ करने के लिए दिया क्या, वो क्यों दिया कि क्या पता अपने को? हाँ वही तो माना है ना हमने, निर्वाण क्षेत्र में से कुछ वाइब्रेशन वहां से वो आएगी और हमका कल्याण करेंगे। हमने तो ऐसा देखा कि कुछ तो ध्यान करने से, इसका चक्र का ध्यान करो, उस चक्र का ध्यान करो, नमोकार मंत्र का ध्यान करो, तो 20 वो तीर्थन करे उनसे कुछ आता है, यहाँ से ये धारा है तुम्हारे ये कहीं से कुछ नहीं आता है, जीव ही उनका लक्ष्य करके स्वयं शुभ भाव रूप परिणमित होता है। भगवान के सामने जाकर हम ही स्वयं शुभ भाव रूप, उनके प्रति आदर भाव रूप परिणमित होते हैं, जिनको उनके स्वरूप का ज्ञान है, उनके उनको देखकर वैसे भाव सहज रूप से उमड़ आते हैं, ऐसा कोई जबरदस्ती तो नहीं आता। और जिनको उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं, जैसे कोई याद औरंगजेब के जमाने में अनेक मूर्तियों का खंडन कर दिया, तो उनके तो उनको देख के द्वेष, क्योंकि वो तो उनके तो ये परधर्मी ऐसा मानकर उसके द्वेष करते थे, तो उनको देखकर उनको शांत भाव देखकर भी उनको क्रोध होता था, उनकी अपनी योग्यता वैसी, जीव के परिणाम अपने से ही होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहेंगे वो अपने से ही होते ना, हम ये यात्रा में जाएंगे नहीं, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं है, उससे नहीं होता, होता तो अपने से है, परंतु वहां जाकर हम खुद उस परिणाम रूप से परिणमित होते हैं, भगवान को देखकर हम खुद उनके वो प्रति अहोभाव हमें उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पूजा का भी उपदेश देते हैं, अध्याय का भी उद्देश्य देते हैं, ये पढ़कर तो ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो अपने से होता है, तो पुस्तक रख दो हम पढ़ेंगे नहीं कल से, ये ऐसा नहीं होता। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये तो क्या है, कभी कभी क्या होता है वो तो निमित्त का निषेध करने लगे, ये बात नहीं होनी चाहिए, वो बैलेंस नहीं होना चाहिए।
हम بزنس نہیں کریں گے بیٹھے بیٹھے پیسے آئے گا,
ایسا تو کوئی نہیں کہتا.
وہ تو کرنا پڑے گا, تو پھر یہ بھی تو کرنا پڑے گا.
ایسے دیکھو یہ جو شاستر میں جان نہیں, وہ تو جڑ ہے, اور جڑ سے گیان چیتن کو گیان نہیں ہوتا. ایسا جب کہتے ہیں, ہم کوکما گئے تھے وہاں, دن میں 6 ٹائم اپنے ہمارے ہوتے تھے, ان کے 3 گھنٹے میرے 3 گھنٹے, ہر سمے ہم آتے تھے اور شاستر جی وہاں وراجمان ہوتے تھے, اس کو نمسکار کر کے ہم بیٹھ جاتے. تو ایک نے پوچھا کہ آپ اس کا نشید کرتے کہ اس سے گیان نہیں ہوتا ہے اور ہر بار آپ اس کو نمسکار کر کے بیٹھتے ہیں, تو کہتے ہیں ہاں یہ جو ویوہار ہوتا ہے وہ ایسا ہی وویک ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, پرنتو گیان میں شردھان میں یہ آنا چاہیے کہ گیان تو اپنے سے ہو, پھر بھی نمت تو ہوتے بھی ہیں اور ان کا وہاں یتھوچت اس کا وویک سے سنمان بھی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. نمت سے نہیں ہوتا تو پھر وہ نمتوں کا انادر کرنے, یہ بھی بات وہاں نہیں رہتی. گرو سے گیان نہیں ہوتا ہے پرنتو ششیہ تو گرو کا ونے کرے گا ہی, کیونکہ اتنا جو الوکک مارگ جن کے دوارا پراپت ہوا ہے ان کے پرتی ونے نہیں ہو تو کرتجن بھاو ہو جائے گا. ہاں بالکل, جس کو کہتے یہ بیلنس جو ہے وہ کھونا نہیں چاہیے, کیونکہ جب یہاں بات آتی ہے دربیان یوگ کے سدھانتوں کی تو اس کو الٹا سوچھند پوشن کرنے کے لیے اگر ارتھ لگائیں گے تو یہ غلطی تو سننے والے کی ہے, وہ برابر صحیح روپ سے اس کا گرہن, جیسے پنیہ کا بھی ہے یہ کر کے نشید کرتے, پرنتو موکشمان پرکاشک میں بھی لکھا ہے کہ پھر بھی جب تک پورن روپ سے انترنگ میں ستھر نہیں ہوتے تب تک تو پرورتن پرشست راگ روپ پرورتن کرو, پرنتو شردھان میں ایسا رکھو کہ یہ بھی چھوڑنے لائے. یہاں تو بات اپنی چل رہی تھی کہ گیارہویں میں مرن ہونے والا تو نیم سے اہم اندر ہوتا ہے, اور جو چرم شریری ہوتے تدھو موکش گامی ہوتے ہیں وہ اپشم شرینی پر یدی چڑھے تو گر کر پنہ کشیپک شرینی پر چڑھتے ہیں. وہ تو نیم ہے کیونکہ اسی بھو میں موکش جانے کا ان کا اسی لیے ہم نے ان کو چرم شریری کہا اور اسی بھو سے موکش پراپت کرتے ہیں. उक्त श्लोक में ऐसे ही चरम शरीरी मुनिराजों का कथन करते, इसलिए कहते कि वो अहमिंद्र पद से विमुख होते हैं. इसको साहित्यिक भाषा में उनका वर्णन करना चाहते इसलिए ऐसे बातें उन्होंने की. जो मुनिराज शुद्धोपयोग से मिले हुए योग विशेष से अहमिंद्र पद की प्राप्ति के योग्य पुण्य विशेष के बंध के अभिमुख होकर भी शुद्धोपयोग के बल से उसे बिना बांधे ही उपशम श्रेणी से उतरकर क्षपक श्रेणी पर चढ़ते हैं, वे जीवन मुक्त होकर परम मुक्ति को प्राप्त करते हैं. यानी वो शुद्धोपयोग में है क्योंकि ग्यारहवें गुणस्थान श्रेणी के तो शुद्धोपयोग के गुणस्थान है, तो कहते हैं कि अहमिंद्र पद की प्राप्ति के योग्य पुण्य के बंध के अभिमुख होकर भी उसको नहीं बांधते, ऐसा कह रहे. यानी यहाँ सारी पुण्य प्रकृतियां बांधती है, यहाँ मुख्यतः वहां देवगति तो बन रही है आठवें गुणस्थान तक, परंतु देवायु वो नहीं बांध रहे, वो बनती तो छठे सातवें में ऊपर के गुणस्थानों में नहीं होती. फिर भी यहाँ तो जो साहित्यिक रूप से उसका वर्णन करना चाहते है इसमें वो कर्णन योग के नियम नहीं निकालते. महापुराण में अहमिंद्र का लक्षण इस प्रकार कहा है, मैं ही इंद्र हूँ, मेरे सिवाय कोई अन्य इंद्र नहीं है, इस प्रकार अपनी सराहना करने से, सराहना करना समझते हैं, अपनी प्रशंसा करना, वे उत्तम देव अहमिंद्र नाम से ख्यात हुए. अहम इंद्र, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही इंद्र, वे न तो परस्पर में असूया करते हैं सारे ही इंद्र है, कोई बड़ा छोटा है ही नहीं है। हाँ, तो नीचे के देवों में जो है ना, वाहन जाति के देव वगैरह बड़े महर्दी देवों की रिद्धियां देखकर उनको असूया होती है, यहाँ तो ऐसी बात नहीं है। न परनिंदा, न आत्म प्रशंसा और न डाह। डाह यानी जल। हाँ, केवल वे सुखमय होकर क्रीड़ा करते हैं। असूया यानी ईर्ष्या। हाँ, सुखमय होकर क्रीड़ा करते हैं, अभी ऊपर के देवों की बात है। वो ग्रेवेक छोड़कर नीचे तो नहीं आते। हाँ, तो वहीं पर उनका वो जो कुछ सुख है उसको भोगते हैं। अभी है ना, वहां तो बाह्य विभूतियों में तो रहते हैं, जो समय दृष्टि है तो समय दृष्टि है, और फिर बस भले है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कितने ही भले जीव लौकिक में जो हम सज्जनता कहते हैं। अब जहाँ नारकी जो परस्पर में लड़ रहे, वो भी समय तो प्राप्त कर सकते हैं, और जो कोई हम कहते भला मानस है, वो क्यों नहीं करते? ये जो आत्म संबंधी जो रुचि होनी चाहिए वो उनके नहीं है। बाह्य संयोग से कुछ नहीं लेना देना। देखो, यहाँ कोई बहुत अनुकूलता होने पर भी किसी को आत्मा की अत्यंत रुचि है और उसके बारे में वो प्रयत्नशील है। कोई बहुत गरीब है, बाह्य संयोग अच्छे नहीं है, उसके हो सकते आत्मा की रुचि जाता है। ऐसा नहीं कि पैसा है तो नहीं हो सकती और नहीं है तो हो सकती, ऐसा भी नहीं है। ऐसा कोई उसमें नियम नहीं है। तो कैसा सुख होता होगा अभी, तो ऐसा प्रश्न है क्या? ये 46 जो है वो पढ़ा था ना मैं। हाँ, उसी का यहाँ समाप्त करते हैं। नव ग्रहवेग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देव अहमिंद्र कहलाते हैं। ये बात हमने पहले देखी थी। नव ग्रहवेग लिखा, नववे ग्रहवेग नहीं लिखा। नव ग्रहवेग ने पहले ग्रहवेग से लेकर सारे, हाँ, सारे नौ के नौ ग्रहवेग। नौ ग्रहवेग है ना, वो एक के ऊपर एक एक है। नौ अनुदिश है, वो एक लेवल पर नौ है, सेंटर में एक और आठ दिशाओं में आठ, और अनुत्तर है सेंटर में सर्वार्थ सिद्धि और बाकी चार विमान। तो ये सारे ही अहमिंद्र है, वे सब ब्रह्मचारी होते हैं, उनमें देवांगना नहीं होती। देवांगनाएं यानी देवियां जो है सोलवे स्वर्ग तक के देवों के ही होती है। उसमें एक विशेषता मालूम है, उनका जन्म कहाँ होता है?
पहले
दूसरे स्वर्ग में ही उनका जन्म लेते हैं। हाँ, वो अपनी अपनी नियोगिनी देवी को लेके जाते हैं नीचे आकर। हमारे वो एनआरआई वहां रहते हैं और यहाँ आके शादी ब्याह करके चले जाते हैं। नहीं, अनुदिश नौ है और अनुत्तर पांच है, सर्वार्थ सिद्धि और बाकी चार। नाम मालूम
है?
जयंत और अपराजित। आगे कहते हैं कि गर्भावतरण आदि कल्याणकों की, ये तीर्थंकरों के कल्याणक होते। गर्भावतरण यानी गर्भ में आना, जिसको हम गर्भ कल्याणक कहते। अवतरण यानी उन्होंने स्वर्ग से वहां चित्त होकर, कहो वहां मरण कर यहाँ माता के पेट में आ गए हैं। तो कहते गर्भावतरण आदि कल्याणक यानी इंद्र आकर उनकी पूजा करते हैं, तो उसको गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याण के ऐसे नाम है कि ज्ञान या केवल ज्ञान कल्याण और मोक्ष कल्याण। तो ये कल्याणकों की आश्चर्यजनक विभूति भी सम्यक सहचारी पुण्य विशेष से ही संपन्न होती है, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म तो समय दृष्टि बांधता है। अकेला तीर्थंकर नाम कर्म ने कितनी ही पुण्य प्रकृतियां बांध रहा है, और ये सब कल्याणकों के नहीं, उतना उत्सव मनाना, इतने सारे देव यानी उनके जो पुण्य विशेष पुण्य का उदय है और उसके कारण ये सब मनाते हैं। तो फिर उसका नाम क्या? सम्यक्त्व सहचारी पुण्य विशेष। ऑर्डिनरी पुण्य नहीं कहा, सम्यक्त्व के साथ वाला पुण्य, क्योंकि सम्यक दृष्टि को ही ऐसा पुण्य बनता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं बनता। اب 47 نمبر پڑھیں گے. دوریشن وشو پوجو جنیتی جنکو گربھوتی مجیو جاتو بھوگان پربھنتے ہری بھروپلتان مندران نشکرمیشن ایلتے دیورشی کیرتی سرخچر نپہی پرورجتیاہی تیج پراپیار ہنتیم پرشاستی کریجگ درشنتو یاتی مکتیم چا دھرمات. धर्म के प्रभाव से जब जीव स्वर्ग से च्युत होकर, च्युत होना नहीं, वो नीचे आ जाता है क्योंकि वहां से मरकर नीचे मनुष्य में आते हैं, ये च्युत होकर आने वाला होता है तो माता पिता को जगत में पूज्य कर देता. आपको पता है वहां मरने के पूर्व ही, यानी गर्भ में 6 महीने, गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व ही ये रत्नों की वर्षा आदि होती रहती वहां, इसलिए उनका नाम है हिरण्यगर्भ. हीरों की रत्नों की वर्षा होती है ना, हाँ, अर्थात 6 महीने पूर्व से और 9 महीने गर्भ के 15 मास तक रत्नों की वर्षा होती है. अर्थात तीर्थंकर के गर्भ में आने से 6 मास पूर्व ही उनके महात्म्य से माता पिता जगत में पूज्य बन जाते हैं. गर्भ में आने पर और भी अधिक पूज्य हो जाते हैं. जन्म लेने पर सौधर्म आदि इंद्रों के द्वारा भेंट किए गए भोगों को भोगता है. हमने देखा था यहाँ जो भरत क्षेत्र के जो तीर्थंकर होते हैं, बालक जन्मता है तो उनके वस्त्र आभूषण आदि वो स्वर्गों से इंद्र लेकर आते हैं. सौधर्म स्वर्ग की जहाँ सभा है वहाँ सामने मानस स्तंभ है बहुत बड़े बड़े, और वहाँ वो रत्नों के पिटारे है, वो मानस स्तंभ से ऐसे सांकल से टंगे हुए, उसमें वो तीर्थंकरों के आभूषण वस्त्र आदि रहते हैं, उनमें से वो लेकर यहाँ आते हैं. ईशान इंद्र है वो ऐरावत के तीर्थंकरों के, वहाँ का मुखिया वहाँ हो, वहाँ ईशान इंद्रों की बोली चलती होगी बड़ी तेजी से. यहाँ सौधर्म की चलती है. गर्भ में आने पर यह हो गया, जब वह घर का परित्याग करना चाहता है, यानी जब दीक्षा के परिणाम हुए तो लोकांतिक देवों के द्वारा की गई स्तुति का पात्र होता है. देखो देव तो ये सब अवधि ज्ञान से जानते ही हैं, और आगामी कौन कहाँ जन्म लेने वाले वो भी सब बातें उनके अवधि ज्ञान से पता चलती है, और इसलिए वो 6 महीने पहले से वो उत्सव शुरू कर देते. यहाँ इनको भी पता चलता है कि अभी उनके जो ऐसे परिणाम हो रहे हैं तो उनकी अनुमोदना करने के लिए लोकांतिक देव आ जाते हैं. दीक्षा कल्याणक में आते हैं, जब वो पालकी लेकर आते हैं और यहाँ से पालकी में ले जाते हैं राजा को वन में, और फिर वहां जाके दीक्षा का वो पूरा आयोजन होता है. तो देवा लोकांतिक देवों के द्वारा, ये लोकांतिक देव कहाँ रहते मालूम है, 5वें स्वर्ग में लास्ट अंत में, अंत में फेरी फेरी में ब्रह्मचारी रहते वो ब्रह्म स्वर्ग. इनको देवर्षि भी कहते क्योंकि वो वहाँ तो ब्रह्मचर्य से रहने वाले हैं और वहाँ नियम से आकर मोक्ष जाने वाले हैं. हमारे कल्याणकों में क्या है, वो छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक सबको वो लोकांतिक बनाते हैं. उन तो लोकांतिक देवों में कोई ऐसे बच्चे और बड़े ऐसा नहीं होते, सब युवा नहीं होते. फिर देव
बड़े
ठीक है ना, वो तो क्या है, यहाँ तो हमें आयोजन किया है और उनको विमान से स्टेज पर उतारते हैं और बच्चों को भी उस बहाने उनके भी ये कुछ, देखो ये जो है ना ऐसे कल्याणकों में जाना, अटेंड करना, उसको देखना, ये भी जिसके बचपन में करेंगे तो उसकी इतना इम्प्रेशन पूरे लाइफ टाइम तक रहे, क्योंकि वो धारणा में बैठ जाती है बातें, और बहुत जिसको कहेंगे इफेक्टिव, जिसको कहेंगे गहराई तक उसके संस्कार हम कहेंगे, ये तो ज्ञान वाली संस्कार वो नहीं, अन्य. हाँ, مجھے ابھی بھی یاد ہے 1953 میں میں نے مہاوسیہ کا ابھیشیک دیکھا تھا. مجھے اس کا ایک ایک پرسنگ پورا یاد ہے. کتنے چھوٹے پن میں ہم گئے تھے اور کیسے گئے تھے. ابھی آج کل تو جانے کی کتنی سویدھا ہے. ہم ٹرین میں چڑھ گئے تھے اور غلطی سے ایسے غلط ڈبے میں چڑھے گئے اور وہاں تک کا پرواسا حسن تک کا. اور میرج میں ایسا کچھ یہ گوا جانے والے ڈبے میں ہم بیٹھ گئے تھے بائی چانس. پھر وہاں اتر کے کیسے کیسے کھڑکی سے اندر ڈھکیل دیا تھا ہم کو اور وہاں پہنچے کیسے ویسے کر کے. ابھی آج کتنی آج کل تو کتنی سویدھائیں ہوئی ہے. کہیں پر جاؤ وہاں پر بھی آیوجن کتنا اچھا. وہاں تو پترے کے گھروں میں رہے تھے مجھے یاد ہے. ابھی تو سر کتنی ویوستھا ہوتی ہے. بہت ساری چاہتے کہ آؤ سنو آؤ سنو آؤ دیکھو یہ سب پیچھے لگتے ہیں. پھر دیو ودیادھر اور راجاؤں سے پوجت ہو کر جن دیکھا گرہن کرتا. یہ سب دیکھا کلیان میں سارے آتے ہیں. منشی بھی راجا سب آتے ہیں ودیادھر آتے بھی سب آتے ہیں. ہاں سبھی کلیان ارہنت اوستھا کو پراپت کر کے تینوں لوگوں کو دھرم کا اپدیش کرتا ہے. یہ شنکر کی بات چل رہی نہیں آپ تھا. گندھر دیو آدی سے پوجت ہوتا ہے انت میں مکتی پراپت کرتا ہے. یعنی سمیتو کے سہچاری پنیہ کی بات یہاں چل رہی ہے. یہ تیرتھنکر نام کرما بھی وہ پنیہ پرکرتی ہے اور اس کے ہدے میں یہ باتیں بنتی ہیں. ان پنیہ سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے. اس جیو کو تو اس کے پرتی کوئی لگاؤ نہیں ہے. پھر بھی سہج روپ سے یہ ایسے کلیانک آدی ہوتے ہیں جس کو ہم پربھاونا کہو. انیہ جیو اس کے پرتی دیکھ کر بھی آشچر چکت ہوتے ہیں کہو یا ان کو بھی اس کا دھرم کا مہاتمیہ پنیہ کا نہیں دھرم کا مہاتمیہ سمجھ میں آتا ہے. کلیانکوں کو اٹینڈ کر کے تو سمیتو کی بھی پراپتی ہو جاتی. کتنا یہ وشیشانت کی تین لائن پڑھ لیتے. ان میں گربھاوتران آدی مہوتسو تو پنیہ وشیش روپ اوپچارک دھرم کے ادے سے ہوتے ہیں یعنی پنیہ پرکرتیوں کے ادے سے. کنتو موکش کی پراپتی تو پورو میں پرتیپادت یعنی بتائے ہوئے مکھیہ دھرم سے ہی ہوتی ہے. یعنی انترنگ میں استھرتا روپ جو ویتراگتا ہے اسی سے ہوتی ہے. کیونکہ سمست کرموں سے چھڑانے کی شکتی مکھیہ دھرم میں ہی ہے. یہ جو انوشنگک جو ہے وہ تو بند ہو رہا ہے اس سے مکتی نہیں ہوتی ہے. اس کو تو بھوگنا پڑے گا کیونکہ اس کے بنا تو جلدی موکش ہو جائے گا. اب وہ ہے تو اس کے بھوگنے میں بھی یہاں رکاوٹ ہے. یہ رکیں گے ہم جانی کے جان تے لو کالو سوانی مستکنم سدا ریت ہو.